ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय तेरहवां श्लोक अथ पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अथ पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् अथ हे द्विजश्रेष्ठ निष्काम या निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय चित्ति की अत्याधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है। किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भगवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि इस सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। चातो वर्णं मे आश्रिष्टं गुण कर्म विभागशः। श्रीमद् भागवत से हम पाठ करते हैं। सर्वोच्च शास्त्र यही श्रीमद् भागवत है, जिसमें परम धर्म की चर्चा होती है। धर्म मानव समाज में धर्म होने चाहिए, चाहे भी हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, धर्म होने चाहिए। धर्म के बिना मानव तो पशु ही है। आहार निद्रा भय मैथुन छा सामान्य मैथत पशु भी नाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशु भी नाराणम। खाना पीना सोना मैथुन करना, आत्मा रक्षा करना पशुओं करते और मनुष्य भी करते। तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य धर्म पालन कर सकते, पशु नहीं कर सकते। तो यदि किसी मनुष्य तो धर्म किसी भी धर्म पालन नहीं करते, वो मनुष्य नहीं है, तो वो द्विपद पशु बोलते। तो परम धर्म क्या है? कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? सिख धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कौन से श्रेष्ठ है? वो विवाद चलते नहीं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, नहीं नहीं हमारा धर्म। ये श्रीमद् भागवत में इसके पहले कहा गया है, सवाई पुंग संग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता यम सुप्रसिद्धति। श्रेष्ठ धर्म वो है जिससे सर्वशक्तिमान भगवान या अल्लाह जो भी नाम से कहना है, गॉड, जिससे वो सर्वशक्तिमान त्रिगुण के अतीत, हमारी कल्पना के अतीत भगवान संतुष्ट होंगे और वो भक्ति इनकी सेवा जो हम करते वो अहैतुकी होना चाहिए और अप्रतिहता, अर्थात उसमें हेतु भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। सामान्यतः लोग जो मंदिर जाते, मंदिर पंजाबी में मंदिर बोलते हैं, मंदिर जाते, गुरुद्वारा जाते, मस्जिद चर्च, तो अलग अलग ढंग से वो भगवान से कुछ मांगते, भगवान मुझको पैसा दो, भगवान ऐसे करो जिससे मेरा फसल अच्छा होगा, हे भगवान मुझको अमेरिकन वीजा दे दो, अच्छी स्वास्थ्य दे दो, कुछ हेतु से भौतिक हेतु से जाते। तो अहैतु की भक्ति का मतलब वो भगवान की सेवा केवल प्रेम से, कोई उसमें कोई भौतिक मांगना नहीं है। और अप्रतिहता वो भक्ति इतना दृढ़ होने चाहिए कि किसी भी अवस्था में, किसी भी तकलीफ में वो भक्त तो कभी भी नहीं चढ़ेगा। और अप्रतिहता शब्द का एक और अर्थ है कि शुद्ध भक्तों की भक्ति सदैव होती है 24 घंटे में। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट सुबह उठ के स्नान करके कुछ पूजा प्रार्थना करना है, या 10 मिनट या 1 घंटा और बाकी समय भगवान को बोलना, ऐसा नहीं है। वो सदैव भगवान का स्मरण करना और सेवन करना, वो अप्रतिहता भक्ति बोलते हैं। और उससे ययात्म सुप्रसिद्धि, यदि हमारा पूरा प्रयास होते हैं कि मेरे चिंतन वचन आचरण उन सबों से भगवान संतुष्ट होंगे, तो हम भी संतुष्ट होंगे। ये जीवन का रहस्य है, सुखी होने का रहस्य है। यदि हम प्रयास करते सर्वदा सर्वथा सर्वत्र सब कुछ जो हम करते तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हम भी इस प्रकार पूर्ण आत्म सुख मिलेंगे, तो वो ही परम धर्म है। तो यदि सिख धर्म के द्वारा या हिंदू या किसी भी धर्म के द्वारा हम पूरी तरह तन्मय होते भगवान की सेवा में, तो वो ही परम धर्म है। अहैतु की अप्रतिहता, वो संस्कृत शब्द है और किसी भी दूसरा शब्दों से बोल सकते, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड अंग्रेजी में भी बोलते हैं, किसी भी भाषा में, भाषा तो बात नहीं है, और हमारी बुद्धि चेतना तो शुद्ध होने चाहिए, तो वो परम धर्म है। और वो परम धर्म की हम सब कुछ केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, उसका दूसरा नाम है प्रेम धर्म, भगवत प्रेम धर्म। वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, श्री चैतन्य चरितामृत की चर्चित विषय है। चैतन्य महाप्रभु विशेष का वो कृष्ण प्रेम जो श्रीमद् भागवत का मूल विषय है, चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण प्रेम विशेष का ब्रज प्रेम को प्रकट किए। श्रीमद् भागवत का गुह्य अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, तो वो चैतन्य चरितामृत में वो सब भगवत तत्व विज्ञान जो श्रीमद् भागवत का विषय है, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहीं कहीं अध्यायों में ये भगवत तत्व विज्ञान का विश्लेषण है, और विशेषकर उत्तम धर्म का विश्लेषण है। श्री चैतन्य चरितामृत का रामानंद संवाद अध्याय में, रामानंद संवाद इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में वो चर्चा जो हुई, जिसमें चैतन्य महाप्रभु शिष्य जैसे शिष्य के रूप में श्री रामानंद राय से पूछे, तो इनसे रामानंद राय से चैतन्य चरितामृत ने पूछे कि साध्य और साधना श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ साध्य क्या है, साध्य मतलब जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जिस लिए जिसको प्राप्त करने के लिए हम साधना करते हैं, तो योग साधना है, कर्म साधना है, ज्ञान साधना है, तपस्या है, मौन व्रत, तीर्थ यात्रा, ये सब करने हैं, तो ये विषय के बारे में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे, और सर्वप्रथम रामानंद राय वर्णाश्रम धाम के बारे में बताए। वर्णाश्रम चरवता पुरुषेन परापुमान विष्णु आराध्यते पंथ नान्यत्तोष कारणम, यही श्लोक श्री विष्णु पुराण से उद्धृत है। जरा सा बैठे। और इसका अर्थ है कि वर्णाश्रम धर्म पालन करके लोग जो विष्णु की आराधना करते हैं तो परम धर्म पालन करते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है भगवान विष्णु को संतुष्ट करवाने के लिए। और चैतन्य, ये शास्त्र का वचन है, चैतन्य महाप्रभु ये विचार सुन के बताए, ए हो बाह्य आगे कहो आ, मतलब ये ए हो बाह्य ये बात तो शास्त्र का सारांश नहीं है। और इस प्रकार राय रामानंद शास्त्र से कुछ श्लोक बताए, कुछ प्रस्ताव किए, और अंत में चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद का प्रस्ताव ग्रहण किया कि ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तं स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ये प्रायशो जितितोऽपि अपि तैस्त्रिलोक्यम्। ये श्रीमद् भागवत से एक श्लोक है कि वो प्रयास अपनी बुद्धि से सब कुछ समझना छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षज है, भगवान अधोक्षज है। हमारे इंद्रियों स्थूल भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना संभव नहीं है, तो कैसे भगवान को समझना, भगवत तत्व समझना? तो पहले हमें समझना चाहिए कि भगवान को समझना संभव नहीं है, परंतु संभव है इनकी कृपा से। अपनी चेष्टा से संभव नहीं है, क्योंकि भगवान महान विशाल अपर्याप्त है और हम बहुत तुच्छ है, और हम ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्ण पथव ये सब दोषों से परायण है। तो केवल एक उपाय है भगवान को समझने के लिए, इनकी कृपा। और इनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? तो अति विनम्र भाव से हमें जीवन को उत्सर्ग करना चाहिए इनकी सेवा में, और विशेषकर इनके भक्तों से इनके बारे में, भगवान के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए। तो वो भगवान जो अजित है, भगवान का एक नाम है अजित, अर्थात हम मन बुद्धि प्रयत्न से भगवान को समझ नहीं सकते, तो समझ सकते यही उपाय से, इनकी कृपा से। तो चैतन्य महाप्रभु का विचार में वर्णाश्रम धर्म वर्जित है, और यही पर हम अभी समावेत है एक वर्णाश्रम प्रकल्प स्थापन करने के लिए। ये विचित्र है ने? तो ये भगवत का श्लोक फिर देखने चाहिए। अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। जीवन का चरण लक्ष्य है भगवान हरि तोषण करना, संतुष्ट करना। वो संभव है वर्णाश्रम धर्म पालन करने से। वास्तव में वर्णाश्रम, यदि हम अच्छी तरह वर्णाश्रम धर्म पालन करेंगे, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु यदि वर्णाश्रम धर्म पालन के साथ यदि हम श्रवण कीर्तन यही भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम साख्यम आत्मनिवेदनम यही नवधा भक्ति से यदि हम भगवान की भक्ति कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो जीवन की संसिद्धि है। तो वर्णाश्रम धर्म साध्य भी नहीं है जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है और परम साधना भी नहीं है भक्ति साधना है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। तो वर्णाश्रम धर्म यदि कृष्ण केंद्रिक होते हैं तो वो सुविधा व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था साधना करने के लिए। इसलिए हम वर्णाश्रम धर्म का पुनः स्थापन करना चाहिए। दैव वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम का मतलब जिसमें वो वर्णाश्रम पालन करने जिसमें देव भगवान की आराधना उसके केंद्र बिंदु है और दूसरा है आसुरिक वर्णाश्रम धर्म। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में भी भक्त है। तो अगर वैसे हो तो हम क्यों बोलते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करेंगे। तो है प्रभुपाद लिखते तो वो ही है विभाजन है पूरा दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग बुद्धिजीवी है कुछ लोग तो नेता है उनका स्वभाव वैसे है कुछ लोग तो व्यापार करते हैं या कृषि गौ रक्षा करते हैं और कुछ लोग संतुष्ट है दूसरों की सेवा करना तो ऐसे है। लेकिन वो विभाग क्या है पूरा दुनिया में आजकल जैसे चलते है वो विभाजन जो है वो स्पष्ट भी नहीं है वैज्ञानिक रूप से नहीं है। और विशेषकर ब्राह्मण ब्राह्मण सही ब्राह्मणों का अभाव है ब्राह्मण तो बहुत है नहीं शर्मा मिश्रा ऐसे पुजारी अधिकारी आपका नाम क्या है कौशिक वो ब्राह्मण जाति है नहीं ऐसे बहुत ब्राह्मण नाम है। वास्तविक ब्राह्मण बहुत कम है वास्तविक ब्राह्मणों की कैसे पहचान है जो वास्तविक ब्राह्मण है शमो दम तपस्ोचंग शांति राजो में बचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम सद्गुण संपन्न संपन्न लोग है ब्राह्मण जिनके मन को दमन किया इंद्रियों को दमन किया तपस्या करते हैं पवित्रता रखते हैं स्वच्छता जिनके व्यवहार में कुछ भी कपटी नहीं है उनके स्वभाव सरल है जो शास्त्र ज्ञानी है और जिनकी बुद्धि व्यवहारिक भी है वो शास्त्र के अनुसार सब कुछ करते हैं और उपयुक्त है अन्य जातियों को शास्त्र के अनुसार सदुपदेश देना। तो उस प्रकार के ब्राह्मण तो बहुत कम है आजकल और क्षत्रिय क्षत्रिय कहा है, पूरे भारत में कोई नहीं है, कोई नहीं है, पंजाब में भी सिख सिख क्षत्रिय जैसे है नहीं। हाँ वो स्वभाव है, क्षत्रियों का स्वभाव है, सिख और बहुत वैश्य भी है नहीं, वो कृषि करते नहीं सिख। परंतु चूंकि समाज में वो वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, इसलिए तो राजा तो चुनाव से बनाना है, तो राजा तो स्वयं शक्तिमान होने चाहिए, नहीं तो वो सब आम लोग से वोट मांगना, वो तो वैसे क्षत्रिय नहीं है। तो इस प्रकार समाज में हो और वैश्य जाति अभी तक वो है नहीं, वो जैसे आपके मारवाड़ी और गुप्ता उनकी खून में ऐसे कैसे पैसा कमाना नहीं मिलना जैसे तैसे। तो ये सब है समाज में, लेकिन दैव वर्णाश्रम धर्म है वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें स्पष्ट है कि सब कुछ जो हम करते हैं, हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ऐसे होना चाहिए। और क्या हुआ भारत में, वो जन्म के अनुसार वो चार वर्णों चलता था। अगर कोई और किसी ब्राह्मण के पुत्र था तो उसको ब्राह्मण बोलते, तो बड़ा बदमाश होते हुए भी शरीर पहनने वाला व्यभिचारी और सभी प्रकार के पाप करके भी उसको ब्राह्मण बोलते, क्योंकि उसके माता पिता के गोत्र वैसे है। और ये आधिपत्य, ये वो ये शब्द तीन बार इस तात्पर्य में आते थे कि झूठी आधिपत्य लेते कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम नीच हो, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, हाँ तुम नीच। ऐसा स्वभाव से असुरिक रूप से कास्ट सिस्टम, उसको इंग्लिश में कास्ट सिस्टम बोलते, वो चलते अभी तक। तो दैव वर्ण आश्रम है जिसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो वर्ण और आश्रम का विचार के अनुसार नहीं होते। रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा प्रदान किए, तो रामानंद राय तो जाति विचार के अनुसार शूद्र थे, कायस्थ कारण जैसे जाति यहाँ पंजाब उत्तर भारत में, तो कारण तो शूद्र कहलाते। और चैतन्य महाप्रभु तो उत्तम ब्राह्मण के जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, रामानंद राय तो गृहस्थ थे, और इसलिए रामानंद राय का संकोच था चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा देना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सार समस्त ज्ञान के स्रोत है, तो अभिनय नहीं से तो हमको सिखाने के लिए कि उत्तम होते हुए भी हमें गुरु के पास जानना चाहिए, परमार्थिक ज्ञान के बारे में पूछना सीखना। तो हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से आध्यात्मिक विषयों के बारे में प्रश्न किया। तो चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश रामानंद राय को बताए, जिससे रामानंद राय समझ गए कि मुझे योग्यता है चैतन्य महाप्रभु को उपदेश देना। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बताए कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व वेत सही गुरु होय। तो यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो या शूद्र हो या सन्यासी हो गृहस्थ हो, यदि कृष्ण तत्व वेत है, मतलब यदि श्रीमद् भागवत के सभी सिद्धांतों कृष्णस्थु भगवान स्वयं जानते हैं, तो वो व्यक्ति अधिकारी है गुरु होना। चैतन्य चरितामृत में भी हम यही उपदेश मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु का श्रीमुख से कि कृष्ण भजन नाहे जात कुल आदि विचार, नीच जाति नाहे कृष्ण भजन अजोग, सत्कुल विप्र नाहे भजन अजोग, जय भजे से बड़ो अभक्त ही नोचा, कृष्ण भजन नाहिक जात कुल आदि विचार। कृष्ण भक्त समाज वैष्णव समाज में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम कैसे विचार करते कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है स्त्री है ये पुरुष है, वो सब तो आध्यात्मिक उन्नति के बारे में कुछ भी युक्ति नहीं है। जो भक्ति करते परम भक्ति करते वो व्यक्ति बड़ा है और बड़ा जात ब्राह्मण सतकुल ब्राह्मण यदि कृष्ण के भजन नहीं करते वो वैष्णव विचार में वो ही नीचे। फिर भी व्यवहारिक व्यवहारिक व्यवस्था समाज में व्यवहारिक व्यवस्था के लिए कुछ लोग तो शिक्षक होने चाहिए, कुछ लोग तो पुजारी होने चाहिए, कुछ लोग तो अनुशासन रखना चाहिए, कुछ लोग तो कृषि और गोरक्षा करना चाहिए और कुछ लोग सहायता करेंगे। तो ऐसा है समाज में, और कुछ लोग ब्रह्मचारी होंगे गृहस्थ होंगे अन्नप्रस्थ सन्यासी होंगे। तो ये सामाजिक विभाजन व्यवहारिक है, परंतु यही समझना चाहिए कि वैष्णव वर्णाश्रम समाज में सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्णप्रस्थ सन्यासी सब एकत्रित होते हरि का भजन में, सब आपस में सहयोगिता करते हरि की सेवा करना। और श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कि ऐसा नहीं है कि जो भगवान की आरती करते आप माता जी आप अंदर आइए बैठिए, अगर उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था करने के आपके लिए नहीं नीचे भी बैठ सकते। तो ऐसा नहीं है कि हरि का मंदिर में जो आरती करते हैं वो बड़ा है वो दूसरा व्यक्ति जो जारू सेवा करते है, ऐसा नहीं है कि पुजारी बड़ा है और जारू लगाने वाला छोटा है, ऐसा नहीं है। सब भगवान की दृष्टि में समान है। सिख धर्म उसमें भी ऐसा बहुत है, लेकिन क्या है वो मानव समाज में लोग की बुद्धि इतना कठिन है कि ये सब बोल के भी ऐसे वो भौतिक विचार आते हैं। जैसे मुसलमान धर्म में बोलते हैं वो सब समान है, लेकिन वो भारत में ही वो मुसलमान धर्म जाति विचार भी है, मुसलमान धर्म जो नहीं होने चाहिए उनके सिद्धांत के अनुसार, लेकिन होते। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा वैष्णव समाज में हम बहुत तत्पर होना चाहिए जिससे वो जाति विचार नहीं आएगा कि यही भक्त पुजारी है और यही भक्त तो किसान है और पुजारी तो किसान से उत्तम है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में ब्राह्मणों को विशेष आदर देना है, वो तो सही है, लेकिन समझना चाहिए कि जय भजे शय भौरव भक्तहीनोचा, हम सब प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करना। स्वय स्वय कर्मण्य भिरत संग सिद्धिम लभते नारा, जो भी काम हम करते हैं हाथ से या मस्तिष्क से बुद्धि से, वो तो पूरी तरह भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति बुद्धिमान होने से, उच्च जाति होने से दंभिक होते हैं तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। हम सब जानते नहीं वो कहानी के नारद मुनि वैकुंठ की ओर जाने वाले हैं और रास्ते में देखते हैं एक पंडित ब्राह्मण जो नारद से वो पूछे कि नारद कहाँ जा रहा हूँ, मैं वैकुंठ जाता हूँ भगवान नारायण का दर्शन के लिए। हाँ वैकुंठ जाता, हाँ हाँ, वो विश्वास नहीं किया। तो नारायण से बताए कि मैं बड़ा ब्राह्मण पंडित हूँ और मेरे लिए यथार्थ स्वागत करना वहाँ, मेरे देहत्याग के बाद मैं वैकुंठ जाऊँगा और नारायण को आशीर्वाद दूंगा, मेरे लिए पूरा स्वागत की व्यवस्था करना चाहिए। नारद मुनि और आगे गया, देखते एक वट वृक्ष के नीचे एक मूची अपना काम करते है और वो मूची तो नारद को देखे तो पूरा दंडवत किया है और नारद मुनि को आदर करके थोड़ा दूर से पूछे कि हे नारद, आराध्य परम भक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं वैकुंठ जाता हूँ नारायण भगवान का दर्शन कर। आप परम भाग्यशाली है, मुझे ऐसा भाग्य नहीं है, मैं बहुत नीच हूँ, मैं चामर से काम करता हूँ। तो यदि आप विचार करते हैं कि इसलिए मैं योग्य हूँ तो मैं निवेदन करता हूँ कि वो भगवान नारायण से आप कृपा मांग ले जिससे मैं जो बहुत नीच हूँ करोड़ करोड़ जन्मों के पश्चात मैं भी अवसर मिलूंगा इनके धाम जाना और इनकी चरण सेवा करना। तो नारद वहाँ वैकुंठ गए और भगवान नारायण के दर्शन किया और इनके मन में वो बहुत स्तुति करने के बाद और नारायण से स्वागत मिलने के बाद नारायण पहले वो मूची की कथा नारायण को बोले कि वो मूची की कथा बहुत नम्र भक्तिमय थी, इसलिए वो मुची की कथा तो ब्राह्मण ब्राह्मण के की कथा के पहले नारायण को बताया। तो नारायण को बताया नारद की तो भगवान आप सर्वत्र विराजमान है, सबके हृदय में अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताना की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक भक्तिमान मुची मुझसे कुछ निवेदन किया, आपको निवेदन करना इनके तरफ से। और इस प्रकार वो मुची बताए कि आपकी कृपा के लिए प्रतीक्षा करते, वो स्वयं को बहुत नीच मानते हैं और प्रार्थना करते हैं जिससे करो करो जामुन के पश्चात वर्तमान स्थिति बहुत नीच होते हुए भी तो प्रार्थना करते हैं कि करो करो जामुन के पश्चात तो वो मुझे अवसर मिलेगा आपके धाम वैकुंठ में प्रवेश करना, चिरकाल आपकी प्रेममयी सेवा करने के लिए। वो ही मुची की प्रार्थना है। और नारायण भगवान बोले कि वो करो करो जामुन का सवाल नहीं है, तो यही शरीर छोड़ के तो मेरे पास सीधे आएगा वो मुची। नारायण कैसे संभव है, तो नीच कर्म करते नहीं, लेकिन उनके मन में पूरी भक्ति भाव है, वो ही है, वो ही योग्यता है मेरे पास आना। नीच उच्च वो तो सामाजिक विचार में नहीं करता नारायण बाबा। तो थोड़ा संकोच से वो नारद वो ब्राह्मण के बारे में बोले कि वो ब्राह्मण बोलते है कि वो उसका देह त्याग करके तो उनके तपस्या और ज्ञान उच्च जाति के बल से तो यहाँ वैकुंठ आएंगे और आपको आशीर्वाद देने। ओ नारायण भगवान थे, मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ वो ब्राह्मण कब आएगा, वो पूरा अयोग्य है, दम्ब होने से वैकुंठ के द्वार तो पूरा बंद हो जाते है, और यहाँ ऊपर नहीं जाते तो नीच जाते। तो नारद ऐसे ओ ये विचित्र विचार है, तो कैसे दोनों को समझाएंगे, और मुची तो मेरी बात विश्वास नहीं करेगा कि वो तुरंत आपके पास जाएंगे, और ब्राह्मण तो विश्वास नहीं करेगा कि वो वैकुंठ तो नहीं जाएगा। तो मुझे दोनों को क्या बताना है, कैसे संभव है कि ब्राह्मण नहीं आएगा और मुझे आएगा। तो वो भगवान नारायण नारद को बताए कि दोनों को ऐसे बताओ कि वैकुंठ में तुम ऐसे देखा कि नारायण एक सुई की छिद्र में से एक हाथी डालता, ठीक है। नारद जानते हैं कि भगवान अपनी बुद्धि से समझना संभव नहीं है, तो उनके आज्ञा शिराराध्य करके तो वापस गए। पहले मुचे के पास जाकर देखते हैं कि वो दूर से देखते हैं कि वो मुची तो हाथ से अपना काम करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करके। तो थोड़ा नजदीक होकर उद्मुचि देखते हैं कि नारद आ रहे हैं और बहुत हर्ष से उठे पूरा अष्टांग दंडवत करते हैं और बोलते आ नारद आप इतना पूजनीय है इतना भाग्यशाली है तो वैकुंठ गया है और भगवान नारायण का दर्शन मेरा परम आराध्य परम प्रेम के आस्पद भगवान नारायण वहां पर क्या किया है क्या किया है. नारद बोले कि वो एक सुई के छिद्र में एक हाथी था. हा कितना महान है मेरा बाबा कुछ भी शंका नहीं था. नारद वो मुची को बताए कि कैसे संभव है कैसे संभव है कि आप क्यों विश्वास करते कि नारायण वैसे कर. तो वो मुझे आए वो तो अशिक्षित होते हुए भी तो बुद्धिमान थे वो मुझे आध्यात्मिक बुद्धि से बुद्धिमान. तो वो बोलते कि मैं ये विशाल वट वृक्ष के नीचे काम करता हूँ और ये वट वृक्ष के एक बहुत छोटा सा बीज में एक और विशाल वट वृक्ष है. ये भगवान की व्यवस्था है तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं. और मुची तो नारद से पूछे कि तो क्या आशा है कि करो करो जामुन के पश्चात मैं भी वैकुंठ जा सकूंगा भगवान नारायण का साक्षात दर्शन साक्षात सेवा करने के लिए. और नारद बोलते कि करो करो जामुन का सवाल नहीं है तो आपकी भक्ति से आपकी श्रद्धा से भगवान नारायण आपको लक्ष्य किया और ये जीवन अंतिम है आपका ये भौतिक संसार में यही नीच समाज का विचार में आपका नीच शरीर चढ़ के सीधे भगवान के पास जाएंगे. तो ब्राह्मण के पास जाकर वो ब्राह्मण तो ऐसे दम से नारद को बताया कि हाँ हाँ तो वैकुंठ से आया हो हाँ 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 वैकुंठ से आया हो हाँ लगते ही तुम फंस गया है. तो ऐसे ही वो दम्भिक ब्राह्मण तो नारद को बताया गया था आते जाते रहता हूँ कभी कभी जाता हूँ वैकुंठ हाँ वैकुंठ गया हूँ हाँ तो नारायण क्या क्या रहा था. हाँ अगर गया तो मुझको बताया कि वो नारायण क्या कर रहा था. और नारद मुनि बताए कि तो एक सुई की छिद्र में से भगवान नारायण एक हाथी था. तुम क्या सोच रहे हो मेरा जन्म खल था तो ऐसे बात में विश्वास करूंगा. तुमको बोला था मेरे लिए स्वागत करना तुम योग्य नहीं है नारायण को किसी भी बात लो जाओ. तो ऐसे है यही कहानी से हम समझ सकते हैं कि नीच जाति न है कृष्ण भजन है अयोग्य और कृष्ण भजन है ना ही जात कुल आदि विचार. तो आशा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये वर्णाश्रम गुरुकुल प्रकल्प समुदाय तो सफल होगा. सफल होगा हम कैसे माप करेंगे सफल होगा सफलता हम कैसे माप करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तीन पीढ़ी के बाद यदि हम आएंगे और यहाँ पर आपके बच्चे के बच्चे यहाँ पर है और कृष्ण केंद्रित वर्णाश्रम धर्म पालन करते, वो तो सफलता हो तो हम नहीं देखेंगे। शायद हम देखेंगे वहां से। सफलता यही है कि यही वर्णाश्रम, कृष्ण केंद्रित वर्णाश्रम पालन करने से हम भगवान का धाम जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे यहाँ रहेंगे और कृष्ण भक्ति करेंगे। तो संघर्ष होगा, सरल जीवन स्थापन करने के लिए ये आधुनिक जमाने में कठिन है। तपस्या होगा, आनंद होगा, कृष्ण भक्ति आनंद। तो एक ऐसे समुदाय गुजरात में कई साल से चलते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकते, वहां पर भी संघर्ष होते। भौतिक जगत में संघर्ष होते हैं। जितने भी हम प्रयास करते हैं शांति स्थापन करने के लिए, खास कलि युग में अशांति होते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म एक प्रयास है जिससे हम जितने भी संभव हो शांति में रहेंगे और कृष्ण की भक्ति करेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख वो सब रहेगा, लेकिन ऐसे प्रकल्प बनाने से विशेष फायदा होते हैं गृहस्थों के लिए जो उग्र कर्म करते हैं और जो आधुनिक जीवन शैली से बहुत तनाव में चलते हैं और सदैव असत संग में रहते हैं। तो यहाँ पर आके एक साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और सुविधा जो नहीं मिलते, प्रतिदिन दो बार या तीन बार सत्संग करना, तो प्रतिदिन वो सुविधा मिलेगी और भक्तों के साथ कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत की चर्चा करना। और यही सुविधा मिलेगी और क्या कि बहुत 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 फायदा होते, थोड़ा तपस्या होते भी, लेकिन वो कल्याण बहुत है कि आप सदैव गोपी चंदन तिलक रख सकते, वैष्णव उचित पोशाक पहन सकते। बहुत बहुत प्रकार के कल्याण होते और खास आपके बच्चे के लिए वो खटला खाना जैसे स्कूल भेजने का जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। अथ पुंबेद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषणम्। हरे कृष्ण। प्रश्न बहुत हो सकते हैं। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस विषय के बारे में पहले बहुत बहुत बल दिया था और सव्यसाची प्रभु भी कस्वान आश्रम के बारे में बहुत बल दिया है और वो सब इंटरनेट से उपलब्ध है जो आप नहीं मिलेंगे यहाँ पर। हरे कृष्ण। और सभी भक्त जो यही व्यवस्था किया जो इसमें जीवन समापन करेंगे जो सहायता किया आर्थिक सहायता और अलग अलग प्रकार की सहायता तो सबको अभिनंदन और आभार। हरे कृष्ण।